बहुत विचित्र लेख है। प्रश्न है, जितने महात्मा हुए सब भगवत प्राप्त थे, फिर उनके मत में भेद क्या रहता है, क्यों रहता है? कोई तो परमात्मा को निर्गुण कह देते हैं, कोई सगुण कहते हैं, कोई साकार कहते हैं, कोई निराकार मानते हैं। जब भगवान को प्राप्त हो गए तो फिर अंत में फिर भेद भी उनका मिट जाना चाहिए, परंतु निराकार वाले निराकार को ही मानते हैं, साकार वाले साकार को ही मानते हैं, क्या कारण है? उत्तर देते हैं। कलकत्ते में रहने वाले गंगा जी जाते हैं, उनका रास्ता अलग अलग है। वे जिस रास्ते से जाते हैं उनके चित्त में वही ध्यान में रहता है और उसी रास्ते की प्रशंसा करते हैं। कोई पूछ लेवे कि गंगा जी कैसे जाए, तो जो व्यक्ति जिस रास्ते पर खड़ा वो वहीं से ही बताएगा कि ऐसे गंगा जी जाओ। अब कोई हरिसन रोड पर है तो वो गंगा जी का रास्ता और बताएगा, और जो अलीपुर की तरफ है वो रास्ता और बताएगा। परंतु गंगा जी तो एक ही है। ऐसे ही कोई हिसाब है, उसके तरीके अलग अलग है, परंतु अंत में टोटल एक होता है। एक चीज का दाम पांच आना है तो 16 चीज का दाम कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। अब इसको कैसे ही करो, चाहे 5 को 16 से गुणा करो और 16 का भाग दो तो 5 रुपया हो गया। कोई देखता है कि भाई 5 आना है, इधर 16 आने का 1 रुपया है, 16 ही चीज है तो 16 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया। किसी भी प्रकार से कोई हिसाब करो, फल एक होता है। इसी प्रकार से जो आचार्य जिस रास्ते से गए उनको वही रास्ता समझ में आया। 4 अलग अलग हैं, सबका फल एक है। 4 अलग अलग है, 4 फल एक है। व्याकरण में भी कहीं पर ई के स्थान पर यह बोला जाता है, पर उसका उसकी चाल है, हर कहीं नहीं बोला जाता। चंद्रमा को भी बताने के लिए बच्चे को मां अलग अलग ढंग से बताती है। तरीके में भेद है पर चंद्रमा में भेद नहीं है। गौरांग महाप्रभु जीव और ईश्वर का नित्य भेद मानते हैं, और कोई कोई तो जीव और ईश्वर में जातिगत अलगाव मानते हैं। इधर ज्ञान मार्ग वाले जीव और ईश्वर को एक मानते हैं, आत्मा परमात्मा एक है। ऐसे ऐसे दार्शनिकों के भेद होते हैं, पर अंत में सब भेद समाप्त हो जाता है। वो भेद समाप्त अपने सिद्धांत से जब कहते हैं, दूसरा उनके सिद्धांत से चलता है, तो उसके मन में भेद नहीं रहता। फिर प्रश्न करते हैं कि जैसा अभी आपने बताया, आचार्यों के लेख में ऐसा नहीं पाया जाता है कि परिणाम एक है। जब सभी मुक्त हो जाते हैं तो फिर परिणाम में भेद नहीं, यह मालूम देता है क्या? उत्तर देते हैं, आचार्य परिणाम एक मानते तो झगड़ा ही नहीं होता। देखो, मैं तो गीता के अनुसार बात करता हूं। गीता कहती है कि सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। मूर्ख लोग हैं जो सांख्य और कर्म योग को, अर्थात संन्यास और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाला मानते हैं। इनमें एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हो जाए तो दोनों का फल रूप परमात्मा मिल जाता है। ज्ञानियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगी के द्वारा भी वही प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, गीता के अनुसार वो यथार्थ देखता है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ये जो दृष्टांत है कि केवल पूर्व की ओर ही गया, दूसरा पश्चिम की ओर गया, तो दोनों ही अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैशेषिक और न्याय तो परमाणुवाद मानकर रह गए। सृष्टि कार्य रूप है, सांख्य और योग आगे बढ़े, परमाणुओं को समाप्त किया, प्रकृति और पुरुष दोनों रहे, प्रकृति कारण है और पुरुष नाना है। वेदांत तो पुरुष की भी एकता कर देता है, नानात्व मिटा देता है। प्रकृति तो जिज्ञासु की दृष्टि में है, वास्तव में प्रकृति नहीं है, अजातवाद माना। सांख्य और योग वैशेषिक और न्याय को स्वीकार करके आगे बढ़े, वैसे सांख्य और योग की बात को स्वीकार करके वेदांत और आगे बढ़ता है। और गीता वेदांत से आगे की बात कहती है कि ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जो स्थित हो जाता है वो कभी भी किसी के लिए शोक नहीं करता और न किसी की आकांक्षा करता है। वो समस्त प्राणियों में समभाव वाला रहता है, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। हम इस सिद्धांत को बड़ा मानते हैं। निर्गुण सगुण साकार निराकार ये बुद्धि की बात है। और अपने में हर्ष के समय में प्रसन्नता न हो और प्रतिकूल अवस्था में शोक न हो, ये हमारी अंदर की जो स्थिति बनती है, ये सिद्धांत हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञानी पराभक्ति को ही ज्ञान मानते हैं और भक्त है ज्ञान के बाद पराभक्ति मानते हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं, आचार्यों की नियत सबकी ठीक है, इसलिए हम सबको ठीक ही मानना चाहिए, दोष की कोई बात नहीं है। अब कोई पूछे कि भगवान का क्या सिद्धांत है, तो भाई भगवान का सिद्धांत है वो हमको सबसे विचित्र गीता में मिलता है। गीता में कहते हैं भगवान, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। परमात्मा को भी अमृत के नाम से बोलते हैं। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, वह परब्रह्म परमात्मा न सत ही है न असत ही है। गेय के स्वरूप का भेद हो सकता है, गेय अर्थात जीव ब्रह्म सगुण निराकार ऐसे भेद, गेय को जानने का फल जो अमृत की प्राप्ति है उसमें भेद नहीं है। निर्गुण का सगुण का जो भेद है ये बुद्धिगत भेद है, अनुभवगत भेद नहीं, खास बात है, बुद्धिगत भेद है, साधन में भेद है, फल में भेद नहीं है। बहुत बढ़िया बात। फल को प्राप्त हुए बिना नहीं जान सकते। अधिकारी भेद से साधन में भेद होते हुए भी आचार्यों के मत में भेद है। अधिकारी भेद से साधन का भेद है, जैसे अर्जुन के लिए कर्मयोग ठीक है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक कर्मों में आसक्ति है तब तक करो, और आचार्यों की मान्यता दूसरी है। अपनी अपनी मान्यता से सब ठीक ही बोलते हैं, हम किसी के मत का निरादर नहीं करते हैं। फिर प्रश्न करते हैं, आचार्य लोग भी परंपरागत ऋषियों को ही तो मानते हैं, उनकी खुद की निकली हुई पद्धति तो है नहीं, उनका मत तो है नहीं, तो हम किधर जाएं कि बात ठीक है। जैनी लोग कहते हैं कि जैन मत सदा से है, बौद्ध लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म बुद्ध के वचन सदा से हैं, मुसलमान अपने मत को अनादि मानते हैं। ऐसी ऐसी बात सुनने पर साधारण आदमी भ्रम में पड़ जाता है कि अब किसको माने। हमारी मान्यता का दायरा कुछ और है, सबकी गुंजाइश है उसमें। शंकराचार्य जी कहते हैं पहले कर्मयोग उसके बाद सांख्य योग, ये बात ठीक है, परंतु ये बात कि केवल कर्मयोग से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, केवल कर्मयोग से अथवा ज्ञान योग से सिद्धि मिल सकती है, ये ठोस बात हमको सबसे अच्छी लगती है। लोगों में प्राय ये भ्रम है कि कर्मयोग से कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, परंतु गीता तो स्पष्ट कहती है अन्य सांख्य नहीं होगे न कर्मी होगे न चापरे। आप घर गृहस्थ में रहते हुए अनासक्त भाव से कर्म करो, उससे आप कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये गीता ने सब आचार्यों से विलक्षण और श्रेष्ठ मत स्थापित किया है। नहीं तो लोग यही मानते थे कि ये सब गृहस्थ का जंजाल कर्म वगैरह छोड़ो और एकांत में रहकर परमात्मा का भजन करो या विवेक को प्राप्त करो, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए काम करते हुए कल्याण नहीं होगा, ये अभी भी मान्यता नहीं छूट रही है। तो फिर उस समय तो ये मान्यता बहुत ज्यादा थी। आत्मा मुक्ति का वाचक है, परमात्मा की प्राप्ति ध्यानियों कर्मियों ज्ञानियों किसी से भी हो सकती है, साधन स्वतंत्र है और फल एक है। ये बात गीता के मूल श्लोकों पर ध्यान देने से समझ में आता है। अब देखो इतनी देर का ना खास बात, अब देखो सेठ जी अपनी सी बात निकालते हैं। मेरे तो गीता इष्ट है, इसलिए गीता वक्ता भी मेरे लिए इष्ट है, पर वैसे मैं कृष्ण को विष्णु को राम को कोई भेद दृष्टि से नहीं देखता हूं, सब एक है, मेरे भेद नहीं है, पद्धति अलग अलग है। जो कृष्ण के उपासक हैं वे कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं, बाकी और अवतार ही हैं, परंतु मैं तो तीनों को ही मानता हूं। ध्यान देवें, पहली बात तो है एक की तो मैं आज्ञा पालन करता हूं, दूसरे के स्वरूप का ध्यान करता हूं और तीसरे का अनुकरण करता हूं, अर्थात कृष्ण भगवान का तो वचन मानता हूं, विष्णु भगवान का ध्यान करता हूं और राम जी का आचरण काम में लेता हूं। बहुत बढ़िया बात है, एक की आज्ञा का पालन करना, दूसरे के स्वरूप का ध्यान करना, तीसरे का अनुसरण करना। हमसे किसी ने पूछा भी कि जब आपके इष्ट कृष्ण है तो आप ध्यान विष्णु का क्यों करते हैं, तो हमारे वो खास मित्र थे, हमने कह दिया कि विष्णु का ध्यान की चतुर्भुज है विष्णु भगवान, तो चतुर्भुज होने से कभी भगवान दर्शन देवे तो हमको चतुर्भुज में ही देवे, यदि कृष्ण रूप में द्विविध दो भुजा के रूप में दर्शन दिए तो हम उसको केवल मानवी मान लेंगे तो भूल हो जाएगी। ऐसे ही राम को यदि राम ही दो भुजा में आ गए तो हमारे मुश्किल हो जाएगी, हम मनुष्य मानेंगे। चार भुजा में तो भगवान विष्णु ही होते हैं, अनुकरण राम जी का करते हैं। तीनों बातें ले ली, तीनों में से एक एक बात ली, क्योंकि उपदेश सबसे अच्छा कृष्ण का, ध्यान सबसे अच्छा विष्णु भगवान का और आचरण सबसे अच्छा राम जी का। भगवान राम का मर्यादा की तरफ विशेष ध्यान था, राम चरित्र आदर्श थे। विष्णु भगवान ने कहीं कहीं कुछ ऐसी आचरण की बात रखी है जिसको हर आदमी समझ नहीं सकता है। जलंधर की स्त्री का जो धर्म था उसको टाला, वो जो अनुष्ठान में थी उसका अनुष्ठान टाला, भस्मासुर के साथ थोड़ा व्यवहार में अलग बात आई, तो ये लोक हितार्थ भगवान विष्णु, क्योंकि वे संसार का पालन करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो वे केवल पेट भराई का ही पालन नहीं करते हैं, वो धर्म का भी पालन करते हैं। राम ने शबरी है लक्ष्मण है प्रजा को उपदेश दिया, बहुत बढ़िया उपदेश दिया, पर सब स्थान स्थान पर है थोड़ा थोड़ा उपदेश दिया, सारा उपदेश आदि से अंत तक एक साथ देखना हो तो केवल गीता में मिलेगा। रामकृष्ण के शरीर की आकृति मनुष्य की तरह थी, धातु तो दिव्य थे पर हार्ड मास जैसा प्रतीत होता था। जैसे कृष्ण भगवान के शरीर में जब बाण लगते, पिता में बाण लगाते यहां, तो उनके शरीर से खून निकलता था। राम जी के साथ भी जब युद्ध होता था तो खून निकलता था, वास्तव में वो खून थोड़ा ही था, वो तो दिव्य शरीर अपने को ऐसा प्रतीत होता था। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करके हमारे पास बैठ जाए तो हम फर्क नहीं कर सकते कि ये वास्तव में भगवान का शरीर है या किसी साधारण मनुष्य का शरीर है। ऐसी बात विष्णु भगवान के शरीर में नहीं दिखती, उनको कोई भी पहचान लेता अरे ये भगवान विष्णु है, क्योंकि उनके चार भुजाएं हैं, क्योंकि वे शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं। प्रत्येक में ये सब बातें स्वाभाविक होने से विशेषता में है। भगवान विष्णु के उपदेश एक जगह विस्तार पूर्वक गीता की तरह कहीं मिलते नहीं है, अलग अलग उपदेश तो आते हैं। मेरी मान्यता कुछ और ढंग की है, मैं अपने हृदय की कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना हो। हम तो क्या उपनिषदों से बढ़कर बातें हैं, ये उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनसे बढ़कर बातें हैं। मेरी मान्यता न्यारी ढंग की है, मैं अपने मन की कुछ बात बताता हूं। मेरा सिद्धांत है, यदि कोई भाई राम का जब ध्यान करता है तो मैं उसकी निष्ठा में फेर बदल नहीं करता, और मैं सब आचार्यों के अनुकूल विचारों को स्वीकार करता हूं, और जो उनके भिन्न मान्यता है उसको पढ़ता हूं, उस पर विचार करता हूं, आचार्यों के मत का मैं आदर भी करता हूं। ये बात प्रारंभ से मेरे में रही। मेरे सगुण निर्गुण की भी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग साधन है, मेरे भक्ति और ज्ञान की समानता है। मेरी भक्ति युगल उपासना की नहीं है, युगल उपासना माने राम और सीता दोनों, कृष्ण और राधा जी दोनों, विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों, ऐसे नहीं है। इसमें भी कुछ कारण है। मैं बच्चा था, एक बार रास देखने गया, उस रास में इतना छोटा बच्चा भी नहीं था, समझदार था, अवस्था छोटी थी, तो रास में कृष्ण और राधिका बने हुए को देखा। राधा की जो सखियां थी, ललिता विशाखा ये सब थे उस रासलीला में। कृष्ण और राधिका ये सब, ललिता विशाखा सब नाच रही थी, तो मेरे मन पर ये सब स्त्रियों का नाचना गाना देख का तो अच्छा असर नहीं पड़ा, मैं वहां से उठ के रवाना हो गया। मेरे मन में विचार आया कि भाई मैं तो राधा जी को सभी को माता के स्थान पर मानता हूं, ये मेरे अंदर कैसे कमजोरी आई कि मेरी दोष दृष्टि होती है कि ये क्या नाचते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा मेरे मन में भाव आया। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो अपने तो केवल एक युगल उपासना ही करनी है ताकि कभी ऐसा भाव जावे ही नहीं। यदि युगल उपासना करते हो, ये मुझे तो एक एक की उपासना करनी, युगल उपासना नहीं करनी। ध्रुव की उपासना केवल विष्णु की थी, लक्ष्मी जी की नहीं थी। तो जब भगवान विष्णु आए तो अकेले ही आए, ध्रुव जी के यहां लक्ष्मी जी नहीं आई। विष्णु पुराण में भी और भागवत पुराण में भी यही बात आती है कि विष्णु भगवान अकेले आए। प्रहलाद जी की भी उपासना एक की थी, इसलिए प्रहलाद जी के यहां नृसिंह भगवान आए, साथ में लक्ष्मी जी नहीं आई। दर्शन दिए तो केवल अकेले विष्णु भगवान ने दिए। मेरे मन में ये धारणा दृढ़ बैठ गई कि एकल उपासना से मेरा काम हो सकता है तो मैं क्यों युगल उपासना में जाऊं। मेरी अवस्था तो छोटी थी उस समय में, यूं बिल्कुल छोटी नहीं, खूब समझता था। मेरी इच्छा थी अध्यात्म विषय में आगे बढ़ूं, तो फिर मैंने विचार किया कि सबसे ज्यादा अध्यात्म में बाधा क्या आती है। तो फिर मैंने विचार किया कि सबसे बड़ी बाधा स्त्री का आकर्षण होता है, तो मैंने तब से विचार किया कि मातृवत परदारेषु, सब स्त्रियों को मैं माता के समान देखूं। कभी कभी स्त्री पर दृष्टि जाती तो अनेक प्रकार के भाव आते हैं, कभी मुख पर दृष्टि चली जाती तो देखा कि नहीं, स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंख से आंख मिलने पर एक दूसरे के हृदय में बसने का डर रहता है। मेरी अवस्था छोटी थी, मैं नीची दृष्टि रखता था, पर नीची दृष्टि रखते हुए भी जब पैरों पर दृष्टि जाती तो ये तो ध्यान जाता ही था कि ये गौरवर्ण की है कि ये श्यामवर्ण की है, ऐसे मेरे मन में ध्यान जाता था। तब फिर मैंने देखा कि ऐसा भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, तो मैं नमस्कार कर लेता था। अपने तो ये सिद्धांत ही है कि चित्र लिखित सीता या कोई भी देवी हो उसको जो है उस रूप में देखना छोड़ दें, चाहे हमको इसके फल में नरक भी क्यों न जाना पड़े, ऐसा हमने विचार किया। फिर और अपन ने हमने विचार किया कि साधन भजन में बाधा क्या है, तो हमको बाधा लगी एक शरीर का आराम, हम अपना आराम ही आराम देखते हैं, ये आराम की बाधा हमको बहुत ज्यादा प्रतीत हुई। एक कीर्ति बड़ाई, एक कंचन और एक कामनी, हमारे चार बाधाएं स्पष्ट दिखती थी कि ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है। बाधा ही नहीं है, बहुत देर तक बहुत दूर तक बाधा देती है। चार सूत्र है, कंचन तजना सहज है सहज तिया का ने। कंचन कामनी का त्याग तो फिर भी सहज बताया है, जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहे वो कंचन कामनी शरीर का आराम और बड़ाई इनका त्याग करे। बड़ाई में अहंता है, अब एक एक में क्या क्या दोष है। अपनी जब बड़ाई होती है, लोग बड़ाई करते हैं, तो अपने में अहंकार बढ़ता है। कंचन में लोभ है, स्त्री में काम है और शरीर के आराम में भोग है। ये चार चीजें आई, अहंता, लोभ, काम और भोग। इसमें भगवान ने गीता जी में कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधस्त तथा लोभस्त तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये काम क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजे हैं और ये अधोगति में ले जाने वाले हैं, और इनसे बड़ा भारी पतन होता है, त्याग देना चाहिए। मेरे पर इस श्लोक का बड़ा असर पड़ा। व्यापार में लगा तो मन में आया कि लोभ का मेरे पर असर रह रहा है, क्या बात है, क्यों असर पड़ता है। तो मैंने बहुत उपाय किया पर मेरे अंदर लोभ वृत्ति खत्म नहीं हुई। तो फिर मैंने भगवान की शरण ली और पुकारा, हे नाथ, अंतर मन से मैंने पुकारा तो मेरी लोभ वृत्ति कम होने लग गई। वैसे क्रोध का आक्रमण भी होता है, पर मेरे जीवन में क्रोध का ज्यादा, क्रोध की ज्यादा प्रधानता नहीं रही। मेरे जीवन में शरीर का आराम, अहंकार, लोभ इत्यादि का असर रहा। मैं भुक्त भोगी हूं, मैं इन सब बीमारियों को जानता हूं और इनका उपाय भी जानता हूं। प्रारंभ से ही मान का उतना असर नहीं रहता था, कहीं मुझे सत्कार या मान मिले तो ये हृदय से तो खटकते थे, पर कमजोरी ये थी कि कहीं बड़ाई होती तो हृदय से खटकती नहीं थी। बढ़िया भी नहीं लगती, बढ़ाई तो बुरी भी नहीं लगती, जबकि बुरी लगनी चाहिए। पर मेरे ऐसी क्या करूं, बढ़ाई मुझे खटकती नहीं थी। तो फिर मैंने और विचार किया, मेरे में ज्यादा दोष क्या है। अतएव जो दोष ज्यादा तेज रहा मैं उससे बहुत सावधान होता रहा। क्रोध की वृत्ति कभी कभी आ जाती थी तो फिर विचार से उसको मैं शांत कर लेता था। और संसार की कोई इच्छा होती तो विवेक विचार ने काम इतना नहीं किया, माने इतना साथ नहीं दिया। फिर ज्ञान योग का उपयोग किया कि सब मायामय है, सब नाशवान है, इसका थोड़ा सा असर पड़ा, ज्यादा नहीं पड़ा। अपकीर्ति का भय दिखाया अपने आप को ही कि देखो इस रास्ते में जाओगे तो महान अपयश होगा, तो थोड़ा असर पड़ा। परलोक का भय नहीं हुआ, कोई उपाय नहीं लगा, तो असहाय होकर मैंने हे नाथ ऐसे पुकार लगाई तो मेरे स्वभाव में फर्क पड़ा। फिर मेरे मन में एक असर पड़ा कि देहा ध्यान से देहाभिमान के नाश के लिए ज्ञान योग ज्यादा काम देता है, भक्ति उतना काम नहीं देती। भक्ति और ज्ञान के सिद्धांत से यही बात है कि देह आत्मा नहीं है, किंतु भक्ति के अभ्यास से इतना असर नहीं पड़ा जितना ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म गहराई से विचार कर आत्मा और देह अलग अलग है, इस विचार का असर पड़ा। तो मुझे दो बातों से लाभ हुआ, हे नाथ इस पुकार से मिला और एक विवेक से मिला। फिर मैंने देखा कि अपने अंदर जो दोष है इन दोषों को थोड़ा बदल दो। तो मैंने निष्काम भाव को बहुत ऊंचा समझा, लेकिन भगवान से कुछ कामना की तो देखा कि भगवान से कामना करने पर कोई दोष नहीं है। अपने को निर्दोष बनाने के लिए भगवान से कामना की कि हे महाराज हमारे में दोष न हो, तो ये कोई कामना नहीं है, तो निष्कामता ही है। और ज्ञान मार्ग में ध्यान से सुनना, ज्ञान मार्ग में हमने एक बात सीखी, अड़ंग बड़ंग स्वाहा। ये कहां मिलेगी बातें भाई, अड़ंग बड़ंग स्वाहा। ये अड़ंग बड़ंग स्वाहा हमने गीता जी के समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् ये पश्यति स पश्यति इस श्लोक से सुना। इस श्लोक से ये अड़ंग बड़ंग स्वाहा, इस श्लोक का अर्थ क्या है कि सब जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव स्थिति से देखता है वही देखना यथार्थ है। तो बाकी तो सब अड़ंग बड़ंग ही हुआ, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मेरे परिवार का है ये मेरे परिवार का नहीं है, ये मेरा शत्रु है ये मेरा मित्र, सब अड़ंग बड़ंग हुआ। तो अड़ंग बड़ंग का तो स्वाहा ही हो जाना चाहिए। पंचभूतों का अभाव होने पर परमात्मा ही तो रहते हैं, अड़ंग बड़ंग स्वाहा होने पर परमात्मा ही बसते हैं। दृश्य का अस्तित्व मिटाने के लिए इस साधन ने हमारा बड़ा सहयोग किया। ज्ञान का साधन दृष्टा साक्षी का, इसका भी मैंने अनुभव किया। देह से अलग होकर शरीर, देह से अलग होकर देह को देखना, सूक्ष्म शरीरधारी बनकर सूक्ष्म शरीर की मन बुद्धि से शरीर को शरीर से अलग होकर स्थूल शरीर को अपने से अलग देखना, एक ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होकर ये मान्यता करना कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसी स्थिति में ब्रह्म में मान ली। ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। आप ब्रह्म रूप बन गए और सब ब्रह्मांड को ब्रह्म में देखने लगे, अनंत रूप में बुद्धि की वृत्ति से सारे ब्रह्मांड को अपने संकल्प में देखें। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोदि गच्छति। देहाभिमान छूट जाता है और इस ज्ञान की हरदम ताजगी रहनी चाहिए। केवल सुनकर के और ये नहीं, ये तो ताजगी तो बुद्धि में भी नहीं, ये तो अपने अंदर की चीज है। बुद्धि तो इस ज्ञान के ऊपर ऊपर के ही कवच है, जैसे तिजोरी का ताला होता है वो ऊपर ऊपर ही रक्षा करता है, पर तिजोरी का ताला खुलने के बाद फिर और ताला खोलने के बाद जो अंदर के अंदर चीज रखी है वो असली धन है। इसलिए वो ज्ञान ताजा रहना चाहिए, साधना फिर आपकी स्थायी हो जाएगी, शनै शनै जोर पकड़ लेने पर भी स्थायी हो जाएगी। हमसे किसी ने पूछा कि भक्ति के साधन में देहाभिमान कैसे छूटे, तो उसका भाई मैंने समझा, वो उपाय बताता हूं। मैंने विचार किया कि ज्ञान योग से तो छूट गया, भक्ति योग से क्या करे, तो और तो कोई बात समझ में नहीं आई। यही बात समझ में आई कि जितने पदार्थ, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य, ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा के हैं, सभी परमात्मा है, ये मेरे भाई है। और अपने को छोटे भाई के स्थान पर समझे और सबको बड़े भाई के स्थान पर समझे, ऐसी मैंने साधना की तो इससे मुझे लाभ हुआ। दूसरी बात, सब में परमात्मा है इसलिए ईश्वर का भाव देकर, स्वरूप देकर अपने को उनका सेवक और सबको स्वामी समझे, जैसा कि रामायण में कहा, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इससे अहंकार बहुत जल्दी टूटता है, देहाभिमान टूटता है। वास्तव में अपने को तिनके से भी हल्का समझना चाहिए। मन से ऐसा समझने से अभिमान का नाश होता है, आगे जाकर अपने को किंकर, किंकर माने सेवक, तृण के तुल्य, तिनके के बराबर, अरे बाबा मेरी तो मैं कुछ नहीं हुई, मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा समझे तो उसके पास अभिमान की गुंजाइश ही नहीं रहती। अपने को तिन से भी छोटा समझे तो सबके साथ अच्छा बर्ताव होगा, चाहे बाहरी बर्ताव नीति के अनुसार हो, पर भीतर में उसका भाव तो परमात्मा का ही समझ करके होता है। असली मान्यता अपनी आत्मा के कल्याण के लिए होती है और वही मान्यता कल्याण के पथ पर चलने वाली है। जब तक ज्ञान है तब तक स्वांग बिगड़ेगा नहीं, ये ध्यान बात। जब तक ज्ञान हमारे अंदर रहेगा तो ये स्वांग बिगड़ेगा नहीं, और जब अपना ही ज्ञान नहीं रहेगा तब स्वांग बिगड़ेगा तो वो दोष भी नहीं है। जब हम अपने आप को भी भूल जाएंगे उस समय यदि बाहर का व्यवहार बिगड़े तो कोई दोष नहीं है। देखो, ज्ञान है तो मर्यादा का पालन होता है, बाद में मर्यादा को छोड़ता नहीं है पर स्वयं छूट जाती है, क्या करें। जैसे कोई आदमी माला फेरता है, माला फेरते 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 यदि वो भगवान में तल्लीन हो गया, उसके बाद उसकी अंगुली न चले और माला उसकी रह जाए, छूट जाए, तो वो विलक्षण स्थिति होती है। ऐसे ही ज्ञानी मर्यादा को छोड़ता नहीं है पर स्वयं छूट जाती है, उसका क्या करे। वहां पर विशेष मर्यादा पर विचार नहीं जाता, ज्ञान होने पर कर्तव्य तो नहीं रहता पर लोक संग्रह ही कर्तव्य रह जाता है। यद्यदा चरति श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे कई लोग सीखते हैं, उसको लोग आदर्श मानते हैं। लोगों को कुमार्ग से बचाने के लिए और सन्मार्ग में चलाने के लिए महात्माओं पर बहुत बड़ा दायित्व है। नमे भगवान भी अपने पर दायित्व मानते हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्ते वच कर्मणि। मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है फिर भी मैं कर्म करता हूं अर्जुन, क्योंकि लोक संग्रह बहुत उच्च कोटि की चीज होती है, जिसका पालन करने से मर्यादा की रक्षा होती है। मैं ये बात स्वीकार नहीं करता कि भगवत प्राप्त महापुरुष मर्यादा की अवहेलना करता है, यह मैं नहीं मानता हूं, पर कई जगह आता है शास्त्रों में कि ज्ञानी हो जाने के बाद मर्यादा को कोई ध्यान नहीं देते, पर नहीं, मैं ये मानता हूं क्योंकि गीता मानती है सक्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षुर लोक संग्रहम। अविद्वान माने मूर्ख जिस प्रकार कर्म में आसक्त होकर लगा रहता है, ऐसे ज्ञानी को भी अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए कर्म में लगा रहना चाहिए, ऐसी भगवान की प्रेरणा है। मान बड़ाई प्रतिष्ठा मनुष्य स्वयं करे या दूसरों से करवाए, ये दोनों ही नीचे दर्जे का काम है। इससे भी नीचे दर्जे की बात यह है कि दूसरों की निंदा करता फिरे, और भी नीचे दर्जे का काम। इससे तो वो अच्छा है जो न तो किसी की निंदा करे और न किसी की प्रशंसा करे। दूसरे की निंदा करने के बजाय जो निंदा न करे प्रशंसा करे वो अच्छा है। उससे भी अच्छा वो है जो स्वतः ठीक ढंग से दूसरों की मान बढ़ाई तो करे, परंतु सबसे अच्छा वो है जो मान बढ़ाई करे उसका हृदय से विरोध करे। ऊपर से चाहे न बोले पर हृदय के अंदर फेंकनी चाहिए कि ये मान बढ़ाई करते हैं, इसको स्वीकार नहीं करना, ये सबसे ऊंची बात है। ये सब बातें मैंने जीवन में काम में लेकर देखी है, वो मैंने आपको बताई है। नारायण नारायण नारायण। अब बताओ उपनिषद में कौन है।